नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के राजनयिक वैश्विक संपर्क के लिए गठित 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में से पहला दल आज 4 देशों की यात्रा पर रवाना होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज भी वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। निगरानी जांच ब्यूरो ने अररिया जिले के रानीगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी और लेखापाल को 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। और मौसम विभाग ने आज कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में आतंकवाद के खिलाफ भारत के रणनीति से दुनिया को अवगत कराने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों का पहला दल आज 4 देशों की यात्रा पर रवाना होगा। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में यह प्रतिनिधि मंडल संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो और सियरा लियोन का दौरा करेगा। श्री शिंदे ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दे रहा है, इसकी जानकारी पूरे विश्व को दी जाएगी।
जिस देश में हम लोग जा रहे हैं, किस प्रकार से भारत का स्टैंड पक्ष वहां पर रखना है, और जिस तरीके से भारत इतने सालों तक टेररिज्म से लड़ता है, जिस तरीके से पाकिस्तान भारत पर हमले करता है, टेररिज्म को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनाह देने का काम कर रहा है, पाकिस्तान जिस प्रकार से ये कारनामे इतने सालों तक कर रहा है, वो पूरे दुनिया को पता होना बहुत जरूरी है।
जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा के नेतृत्व में दूसरा प्रतिनिधि मंडल कल इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर रवाना होगा। डीएमके सांसद कनी मोई के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस जाएगा। सांसद संजय झा ने कहा कि भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए नया तरीका अपनाया है।
9 जो टारगेट थे पाकिस्तान में, जहां से जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा का मेन हेडक्वार्टर था उसको डिमोलिश किया, 3 दिन साइड बहावलपुर तक जाकर के टेररिस्ट कैंप को खत्म किया। जहां हम लोग जा रहे हैं ये बताने कि पूरा दुनिया में जहां आतंकवाद होता है उसका जो रूट है वो पाकिस्तान है, पूरा वहां की सरकार, वहां का आर्मी वहां पर इन्वॉल्व है।
आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के रूप में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह का स्मरण कर रहे हैं।
हरियाणा में जन्मे मेजर होशियार सिंह जून 1963 में 3री ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में शामिल हुए। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान बटालियन को बसंतर नदी पर एक पुल बनाने का काम सौंपा गया था, जो दोनों तरफ गहरी बारूदी सुरंगों से ढकी हुई थी। मेजर सिंह सी कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्हें जरपाल इलाके पर आक्रमण करने का निर्देश दिया गया था। कंपनी पर दुश्मन की ओर से मशीन गनों से भारी गोलाबारी हुआ। दुश्मन की गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर होशियार सिंह हिम्मत नहीं हारे और अपने जवानों को प्रेरित करते हुए एक खाई से दूसरी खाई तक आगे बढ़ते गए। जब वे अपने जवानों को प्रोत्साहित कर रहे थे, तभी दुश्मन का एक गोला मीडियम मशीन गन पोस्ट के पास आकर गिरा, जिससे चालक दल के लोग घायल हो गए। मेजर होशियार सिंह स्थिति को समझते हुए तुरंत मशीन गन पिट की ओर दौड़ लगाई और खुद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद गन को संभाला और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। हमले को सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया और दुश्मन के कमांडिंग ऑफिसर सहित 85 जवान मारे गए। मेजर होशियार सिंह को उनकी वीरता और कर्तव्य के प्रति अडिग समर्पण के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें सलाम करता है, राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सर्वोच्च न्यायालय में आज भी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश बी आर कवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ आज इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष सुनेगी। कल हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि इस कानून पर रोक लगाने के लिए मजबूत मामला पेश करना होगा। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों में तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती जब तक कि उनमें स्पष्ट रूप से असंवैधानिकता साबित न हो जाए। गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन 31 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी आवश्यक जानकारियां पोर्टल पर विशेष फॉर्मेट में दी जानी चाहिए। उसमें जिन व्यक्तियों को पुरस्कार देने का अनुमोदन किया जा रहा हो उनकी विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों का भी संदर्भ सहित स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि किसानों को खेती बाड़ी से संबंधित जानकारियां स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाए। श्री सिन्हा पटना में खरीफ महाभियान सह कार्यशाला के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरल हिंदी भाषा में कृषि योजनाओं और तकनीकी कार्यक्रमों का नाम रखने से किसानों को काफी लाभ होगा।
ये खरीफ से शारदीय फसल जो मेरे संस्कृति और हिंदी शब्द में है वो अरबी शब्द था, मुगलों के समय वो शुरू, और रबी भी अरबी शब्द था, उसका वासंतिक फसल, और अब ये चलेगा, इसका उपयोग आम भाषा में होगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। किसान जिस भाषा को समझे उस भाषा में उसको अपनी भाव रखनी चाहिए।
राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें कक्षा 1 से 5 के लिए 5,534 विशेष विद्यालय अध्यापक के पद हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए कुल 1,745 रिक्त पद हैं। नियुक्ति के संबंध में शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को दिशा निर्देश भेजते हुए शीघ्र विज्ञापन जारी करने का अनुरोध किया है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के अंगीभूत महाविद्यालयों में लॉटरी सिस्टम से प्राचार्यों की पोस्टिंग प्रक्रिया पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजेश वर्मा की एकल पीठ ने इस संबंध में राजभवन द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही न्यायालय ने कहा कि यदि राजभवन चाहे तो अधिसूचना में सुधार करके नई अधिसूचना जारी कर सकता है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों के मौसम में बदलाव हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं दक्षिणी हिस्सों में भी कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले में कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है।
अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। दिनांक 21 मई 2025 को राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के शेष जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने अररिया जिले के रानीगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी रीतम कुमार चौहान और लेखापाल आदित्य प्रियदर्शी को 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सरकारी कर्मी एक संवेदक से योजना का बिल पास कराने के एवज में घूस ले रहा था। वैशाली जिले के 6 स्वास्थ्य उप केंद्रों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य स्तरीय NQAS का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। सुपौल जिले में 12 सदस्यीय केंद्रीय उच्च स्तरीय समिति ने पूर्वी कोसी तटबंध और चतरा तथा कुल टेगोरा में चल रहे बाढ़ पूर्व कटाव निरोधक कार्य का निरीक्षण किया। बेगूसराय में एसटीएफ और पुलिस की टीम ने अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी रणवीर महतो को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी चंपारण जिले के हरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत मैत्री पुल के पास से पुलिस ने 25,000 रूपये के इनामी अपराधी विजय दास को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी पर मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। बिहार एसटीएफ ने नवादा, गया और औरंगाबाद से 3 नक्सली समेत 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी बैजू मुर्मू को आजीवन कारावास और 10,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बाढ़ सूखा से निपटने की तैयारी, इसी महीने मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर दिए निर्देश। दैनिक जागरण ने लिखा है, 26 से 28 मई तक अभियान चला, पंचायतों में बनेगा आयुष्मान कार्ड। दैनिक भास्कर लिखता है, बिहार में नहीं हैदराबाद में होगा विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप। प्रभात खबर की सुर्खी है, पीएम मोदी राजस्थान के बीकानेर से थावे और पीर पैती स्टेशन के पुनर्विकास का कल करेंगे उद्घाटन। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर और एमआर श्रीनिवास के निधन की खबर को राष्ट्रीय सहारा ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। आज अखबार ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है, सिविल जज के लिए अब 3 साल वकालत जरूरी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के राजनयिक वैश्विक संपर्क के लिए गठित 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में से पहला दल आज 4 देशों की यात्रा पर रवाना होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज भी वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। निगरानी जांच ब्यूरो ने अररिया जिले के रानीगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी और लेखापाल को 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। और मौसम विभाग ने आज कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।